नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। दिल्ली सरकार ने होली और दीपावली के अवसर पर शहरवासियों को निशुल्क गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने केंद्रीय बजट को नेक्स्ट जेनरेशन बजट बताते हुए कहा, इससे दिल्ली के विकास को नई गति मिलेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अब राजधानी में कोई भी विद्यालय अभिभावकों को विश्वास में लिए बगैर मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर दिए गए विशेष ध्यान का स्वागत किया है। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करते हुए इसे आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वॉल्ड सिटी क्षेत्र में बिजली के तार भूमिगत किए जाएंगे, व्यापक यातायात नियंत्रण उपाय लागू होंगे और बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। चांदनी चौक, जामा मस्जिद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग और दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक सौंदर्यकरण परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही सरकार ने सड़कों, सीवर, पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अब इन योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने होली और दीपावली के अवसर पर शहरवासियों को निशुल्क गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इसके लिए 242 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया गया है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पाइपलाइन गैस लेने वालों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
मैं दिल्ली के अपने परिवारों को शुभकामनाएं देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे कहा है, उन सब वायदों को हम पूरा करेंगे। एक एक करके सारे संकल्प हमारे पूरे किए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, परिवारों के लिए खुशी का मौका है कि उन्हें इस तरह का सहयोग मिलना, विशेष रूप से वो वर्ग जिसके लिए एक बहुत बड़ी मदद है ये। तो सरकार की ओर से साल में 2 सिलेंडर होली और दिवाली पे, तो इस बार की होली से पहले पहले ये सिलेंडर हम अपने राशन कार्ड परिवारों को ये DBT करके उन तक दे देंगे।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक राशन कार्ड धारक के बैंक खाते में 853 रुपए देने की भी घोषणा की है ताकि उपभोक्ता अपनी सुविधा से निशुल्क सिलेंडर ले सकें। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने केंद्रीय बजट को नेक्स्ट जेनरेशन बजट बताते हुए कहा है कि इससे दिल्ली के विकास को एक नई गति मिलेगी। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री सिंह ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत और विकसित दिल्ली का रोड मैप तैयार करता है। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में लोक निर्माण विभाग को सड़क विकास के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष में लगभग 1200 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी ने कहा है कि केंद्र के आम बजट 2026-27 में दिल्ली की परिवहन, जल, स्वास्थ्य, प्रदूषण और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर खास ध्यान दिया गया है। एक संवाददाता सम्मेलन में श्री विधुड़ी ने बताया कि सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए दिल्ली को लगभग 27,328 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिवमूर्ति महिपालपुर टनल, एम्स महिपालपुर एलिवेटेड रोड और अर्बन एक्सटेंशन रोड जैसी बड़ी परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि दिल्ली में 599 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे चंद्रावल के नए जल शोधन संयंत्र का परिचालन इसी साल शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये संयंत्र हर रोज 105 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति करेगा, जिससे राजधानी की लगभग 11% आबादी को लाभ मिलेगा। एक रिपोर्ट।
दिल्ली सचिवालय में जल बोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संयंत्र के शुरू होने से लीकेज और तकनीकी नुकसान कम होंगे तथा स्वच्छ जल की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके साथ ही 1331 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी पाइपलाइनें भी बदली जा रही हैं, जिससे करोलबाग, सदर बाजार, चांदनी चौक, पटेल नगर और आरकेपुरम सहित कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बेहतर होगी। दिल्ली सरकार के अनुसार वर्षों से लंबित ये परियोजना अब तेजी से पूरी की जा रही है और इससे राजधानी की आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
दिल्ली सरकार ने स्थानीय निकायों को बेसिक टैक्स असाइनमेंट की तीसरी और अंतिम किस्त जारी कर दी है। इसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 68 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी करने को मंजूरी दी है। ये राशि दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड को आवंटित की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह राशि जनहित, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और आवश्यक नागरिक सेवाओं को मजबूत करने में उपयोगी रहेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज कहा कि अब राजधानी में कोई भी विद्यालय अभिभावकों को विश्वास में लिए बगैर मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। श्री सूद ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में हुई दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम को लेकर सुनवाई की सराहना की।
दिल्ली के अभिभावक और दिल्ली के बच्चों के लिए ऐतिहासिक दिन है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ फी एक्ट पर सुनवाई के समय ये स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अब दिल्ली का कोई भी स्कूल बिना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना फी रेगुलेशन कमेटी बनाए कोई स्कूल फीस के बारे में निर्णय नहीं कर पाएगा।
उन्होंने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस सरकार ने महंगे वकीलों के सहारे इस कानून को टालने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। श्री सूद ने कहा कि इस अधिनियम से फीस निर्धारण में पारदर्शिता और अनियंत्रित बढ़ोतरी पर प्रभावी रोक से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर दिए गए विशेष ध्यान का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एम्स की मीडिया सेल प्रमुख और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि एम्स के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। इससे मरीज केंद्रित सेवाओं, बुनियादी ढांचे, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान को मजबूती मिलेगी।
इस साल जो बजट हेल्थ के लिए यूनियन बजट में हेल्थ की एलोकेशन हुई है, उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में पिछले साल से 5.85% का इंक्रीज हुआ है बजट एलोकेशन। इससे हम अपने जो पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना टीचिंग, जो लर्निंग, मेडिकल एजुकेशन में विस्तार और रिसर्च में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो हम तो ये बजट को बहुत वेलकम करते हैं।
डॉक्टर रीमा ने कहा कि बजट से संस्थान में एक नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक और सर्विस ब्लॉक का निर्माण होगा। साथ ही कम आयु में बढ़ रहे कैंसर मामलों को देखते हुए 17 कैंसर दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट को उन्होंने मरीजों के लिए एक बड़ी राहत बताया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने एक टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड प्रणाली का प्रदर्शन किया है, जिसके जरिए दिल्ली में बैठे डॉक्टर अंटार्कटिका जैसे दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में भी रियल टाइम अल्ट्रासाउंड जांच कर सकेंगे। इस उन्नत प्रणाली में डॉक्टर दूर से ही एक रोबोटिक आर्म को नियंत्रित करते हैं जो अल्ट्रासाउंड प्रोब को संचालित करता है, जबकि जांच की तस्वीरें फौरन दिल्ली में मौजूद चिकित्सक तक पहुंचती हैं। इस तकनीक को एम्स और IIT दिल्ली ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये नवाचार दूर दराज और प्रतिकूल भौगोलिक क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कनॉट प्लेस में 2 CNG स्वीपर मशीनों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन आधुनिक मशीनों से सड़कों की तेज और प्रभावी सफाई होगी तथा धूल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने किराड़ी क्षेत्र में कूड़ा डाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताया है। श्री सिंह ने कहा कि किराड़ी क्षेत्र में भलसवा का कचरा नहीं बल्कि मिट्टी से भूमि समतलीकरण किया जा रहा है, जो पूरी तरह वैध प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि NHAI और DDA की अनुमति से काम किया जा रहा है और कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। महापौर ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक ने विकास कार्यों की अनदेखी की और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए झूठ फैला रहे हैं। नेता सदन प्रवेशवाही और स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने भी स्पष्ट किया कि सभी काम नियमों के तहत हो रहे हैं और दिल्ली सरकार नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज कला संकाय में वंदे मातरम हॉल का उद्घाटन किया और हॉल के द्वार पर पूर्ण वंदे मातरम के शिलालेख का अनावरण भी उन्होंने किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि हॉल अनेकों वर्षों तक प्रेरणा का काम करेगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने भारत के हर संकट में भारत का साथ दिया है। श्री सिंह ने कहा कि 5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हॉल में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ 688 लोगों के बैठने की सुविधा है। दिल्ली यातायात पुलिस और सुजुकी टू व्हीलर्स के बीच राजधानी में सड़क सुरक्षा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस साझेदारी के अंतर्गत बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित यातायात प्रशिक्षण उद्यान को उन्नत कर इंटरैक्टिव शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम जनता में यातायात अनुशासन, नियमों की समझ और जिम्मेदार सड़क व्यवहार को बढ़ावा देना है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक व्यक्ति से 17,16,000 रूपये से अधिक की ठगी की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित को वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर उससे पैसे ऐंठे। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है और अब इस मामले में आगे जांच जारी है। देश के उत्तरी हिस्सों में घने कोहरे के कारण आज रेलगाड़ियों के संचालन पर असर पड़ा। रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अनुसार दिल्ली आने वाली 23 से अधिक रेलगाड़ियां 2 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। यात्रियों को यह सलाह दी गई है कि वे स्टेशन आने से पहले रेलगाड़ियों के बारे में ताजा जानकारी जरूर ले लें। राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे के कारण विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा है। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने या आधिकारिक वेबसाइट को देखने की सलाह दी गई है। सभी टर्मिनलों पर अधिकारी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जापूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षार्थियों से तनाव रहित होकर परीक्षाएं देने, चुनौतियों से निपटने के व्यावहारिक तरीके अपनाने, सामंजस्य स्थापित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा और दिन भर धूप खिली रही। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान रहा 9.4 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के अनुसार कल सवेरे कोहरा छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। दिल्ली सरकार ने होली और दीपावली के अवसर पर शहरवासियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने केंद्रीय बजट को नेक्स्ट जनरेशन बजट बताते हुए कहा इससे दिल्ली के विकास को नई गति मिलेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा अब राजधानी में कोई भी विद्यालय अभिभावकों को विश्वास में लिए बगैर मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर दिए गए विशेष ध्यान का स्वागत किया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।